एक सीन इमेजिन करते हैं, एक अनजान शहर है और वहां के बीचों बीच किसी को अचानक घसीट कर लाया जाता है।
हाँ, और एक पागलाई भी भीड़ चिल्लाती भी इकट्ठा हो गई है वहां।
बिल्कुल। और उस भीड़ के बीच बिना किसी सवाल जवाब के उस इंसान के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, बिना किसी सबूत या लीगल ट्रायल के सबके सामने बुरी तरह पीटा जाता है।
और जुर्म क्या था उनका? ना कोई खून किया था, ना कोई चोरी की थी।
सही कहा, उनका सिर्फ इतना सा जुर्म था कि उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेस का प्रॉफिट जीरो कर दिया था।
ये सुनने में ना मतलब किसी इंटेंस हिस्टोरिकल थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है, जहां कानून की जगह मॉब रूल का राज हो। लेकिन दरअसल ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे फैसिनेटिंग और वेल डॉक्यूमेंटेड मोमेंट्स में से एक है।
एग्जैक्टली। और आज हम इसी हिस्टोरिकल इवेंट का डीप डाइव कर रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है। सुनने में ये शायद किसी आम धार्मिक कहानी जैसी लगती है, पर असल में ये पावर, पॉलिटिक्स और मॉब साइकोलॉजी का एक बेहतरीन मास्टर क्लास है।
हाँ, और हम एंशिएंट रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल एनालिसिस के जरिए, खासकर डॉक्टर क्रेग कीना द्वारा एक्ट्स यानी कर्मों की पुस्तक के 16th और 17th चैप्टर पर आधारित डिटेल्ड रिसर्च के हवाले से ये समझने वाले हैं
कि शुरुआती ईसाई धर्म का सीधा टकराव रोमन एम्पायर की बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम, वहाँ की लोकल इकोनॉमी और पब्लिक फियर से कैसे हुआ।
बिल्कुल, और यही इस डिस्कशन का कोर मिशन भी है। हम सिर्फ पुरानी डेट्स और इवेंट्स का रिकैप नहीं कर रहे हैं, हम उस मैकेनिज्म को डिकोड कर रहे हैं जहां कानून, भीड़ की मेंटालिटी और सत्ता का एक अजीब सा डेंजरस मिश्रण बनता है। हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये मशीनरी काम कैसे करती थी।
तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है फिलिपी से, और ये कोई मामूली जगह नहीं थी।
हाँ, वहां के लोकल लोग अपने रोमन होने पर बहुत गर्व करते थे, यहाँ तक कि वहाँ 85% से ज्यादा शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस लैटिन भाषा में थे।
सही में। तो यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर हैं पॉल, जिन्हें पॉलुस भी कहते हैं, और उनके साथी साइलस। वो शहर में घूम रहे थे जब उनकी मुलाकात एक ऐसी दासी लड़की से होती है जिसके बारे में वहाँ के लोगों का मानना था कि उसके अंदर एक पाइथन स्पिरिट है।
हाँ,
अब पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया, मतलब ये पाइथन स्पिरिट एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट था उस दौर में?
उस जमाने की हिस्ट्री में, खासकर ग्रीको रोमन कल्चर में, ऐसी आत्माओं पर भरोसा करना बहुत ही कॉमन था। पाइथन स्पिरिट का बेसिक मतलब था एक ऐसी आत्मा जो फॉर्चून टेलिंग या भविष्यवाणी कर सकती थी।
अच्छा।
लोग अपना फ्यूचर जानने के लिए उस लड़की के पास आते थे, यहाँ तक कि बाद में 3री शताब्दी आते आते कुछ एंशियंट रैबाइज का तो ये तक मानना था कि अगर लोग अपना एक हाथ हवा में बाहर निकालें तो वो हजारों ऐसी अनजान आत्माओं को छू लेंगे। तो ये आत्माओं वाला कॉन्सेप्ट उनके माइंड में बहुत रियल और एवरीडे लाइफ का हिस्सा था।
राइट।
पर इस पूरी घटना में असल प्रॉब्लम वो आत्मा नहीं थी।
तो प्रॉब्लम थी क्या?
असल प्रॉब्लम ये थी कि ये लड़की अपने मालिकों के लिए पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा और स्टेडी जरिया थी। लोग उसकी भविष्यवाणी सुनने के लिए हैवी अमाउंट पे करते थे। जब पॉल ने उस लड़की को इस आत्मा से मुक्त किया तो अचानक से
उनका बिजनेस खत्म।
एग्जैक्टली। उन मालिकों का रेवेन्यू मॉडल वहीं के वहीं परमानेंटली क्रैश हो गया। उनकी कमाई बंद हो गई।
अब मैं इसका स्केल समझ पा रहा है। तो एसेंशियली ये एक मैसिव फाइनेंशियल हिट था। ये तो लिटरली वैसा ही हो गया जैसे आज के जमाने में किसी कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर ने किसी बड़ी फ्रॉड कंपनी के बिजनेस मॉडल को पब्लिक में एक्सपोज कर दिया हो।
बिल्कुल।
और उसका सारा प्रॉफिट एक झटके में जीरो हो गया।
अब ऑब्वियसली कंपनी के लोग नेचुरली गुस्से में आएंगे, पर वो करते क्या हैं? अगर मेरा नुकसान हुआ है तो मैं तो सीधा कोर्ट में जाकर यही कहूंगा ना कि इसने मेरा बिजनेस बर्बाद किया, मुझे प्रॉपर्टी डैमेज का मुआवजा चाहिए।
लॉजिकल अप्रोच वही होती, पर यहाँ पर उन मालिकों ने एक बहुत बड़ा और चालाकी भरा शॉर्टकट लिया। वो पॉल और साइलस को पकड़कर शहर के अगोरा में खींच ले जाते हैं।
अगोरा मतलब उस जमाने का पब्लिक स्क्वायर। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, ये लगभग 70x150 मीटर का एक मैसिव रोमन फोरम था। शहर की सारी लीगल प्रोसीडिंग्स, पॉलिटिक्स और पब्लिक डिबेट्स यहीं होती थी।
ओके।
जब मालिक उन्हें वहां लेकर पहुंचे तो उन्होंने प्रॉपर्टी डैमेज या फाइनेंशियल लॉस का कानूनी केस बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि एक आत्मिक एक्सोरसिज्म के आधार पर प्रॉपर्टी डैमेज जीतना लीगल टेक्निकलिटी में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने भीड़ के डर और उनके प्रेजुडिसेस का पूरा फायदा उठाया।
तो उन्होंने आरोप क्या लगाया?
उन्होंने पब्लिक स्क्वायर में चिल्लाना शुरू किया कि ये लोग जो कि यहूदी हैं, हमारे शहर में आकर ऐसे रीति रिवाज सिखा रहे हैं जो हम रोमन लोगों के लिए गैर कानूनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया।
वेट, क्या वही शिफ्ट है? मतलब बेसिकली इनका एक्चुअल मुद्दा था पैसे का और फाइनेंशियल लॉस का, पर उन्होंने उस केस को नेशनलिज्म, ज़ीनोफोबिया और विदेशियों के डर का रंग दे दिया। दैट्स वाइल्ड।
हाँ,
दैट्स लाइक अ विसल ब्लोअर एक्सपोजिंग अ कंपनीज फ्रॉड, एंड इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग द बिजनेस द कंपनी गेट्स द विसल ब्लोअर अरेस्टेड फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज जस्ट टू शट हिम अप।
बिल्कुल ऐसी ही चलाकी थी ये। उन्होंने उस वक्त के पॉलिटिकल क्लाइमेट का बेहद ब्रिलियंटली फायदा उठाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय रोम की सम्राट क्लॉडियस ने ऑफिशियली यहूदियों को रोम शहर से निकाल दिया था।
ओह राइट।
पूरे एम्पायर में एंटी जूडिज्म की एक हवा चल रही थी। जब फिलिपी में उन मालिकों ने पॉल और सिलास पर रोमन नियम तोड़ने और फॉरेन कस्टम लाने का आरोप लगाया, तो उन्होंने सक्सेसफुली कानून का इस्तेमाल जस्टिस के लिए नहीं बल्कि एक इमोशनल भीड़ को भड़काने के लिए किया। उन्हें पता था कि रोमन प्राइड को टच करते ही भीड़ उनके सपोर्ट में आ जाएगी।
और जैसे ही भीड़ भड़की, लॉ एंड ऑर्डर तो जैसे विंडो से बाहर फेंक दिया गया। इस नेशनलिज्म और फियर मॉन्गरिंग का नतीजा सीधे तौर पर एक्सट्रीम फिजिकल वायलेंस के रूप में निकलता है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के और बिना जज के वर्डिक्ट के। पॉल और सिलास को लिक्टोर्स के हवाले कर दिया जाता है।
हाँ, लिक्टोर्स उस जमाने में रोमन मैजिस्ट्रेट्स के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स या एनफोर्सर्स जैसे होते थे। उनका मेन टूल ऑफ ट्रेड थे लकड़ी की छड़ियां। इस तरह की इंस्टेंट ब्रूटल फिजिकल पनिशमेंट को उस जमाने में कोअर्सिटियो कहा जाता था।
कोअर्सिटियो
पैदा करके ऑर्डर मेंटेन करना ज्यादा था।
बट टॉर्चर सिर्फ मारपीट तक ही लिमिटेड नहीं था। उनके कपड़े बुरी तरह उतारकर उन्हें सार्वजनिक रूप से नंगा किया गया और फिर पीटा गया।
अब सोचे, खास तौर पर अगर हम उस वक्त के मिडिल ईस्टर्न और जुडियन कल्चर को देखें, जहां शर्म और इज्जत को लाइफ एंड डेथ जैसा महत्व दिया जाता था। नंगे होकर पूरे शहर के सामने पिटना शायद फिजिकल दर्द से भी बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहा होगा। एक इंसान की पूरी डिग्निटी मिटा दी गई वहां।
और इस ब्रूटल पब्लिक शेमिंग के बाद उन्हें जिस जगह भेजा गया, वो आज के स्टैंडर्ड से कोई नॉर्मल प्रिजन या सुधार गृह नहीं था। उन्हें सीधा सबसे अंधेरी भीतरी जेल, जिसे इनर प्रिजन कहते हैं, उसमें डाल दिया गया।
बाप रे, ये एक ऐसी जगह थी जहां नेचुरल लाइट या फ्रेश एयर आने का कोई रास्ता नहीं था। बेहिसाब गंदगी, ह्यूमिडिटी और सैनिटेशन की एब्सोल्यूट जीरो सुविधा। ऊपर से उनके पैरों को लकड़ी के एक मैसिव स्ट्रक्चर में कस दिया गया, जिसे स्टॉक्स कहते हैं।
मुझे स्टॉक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना था, क्योंकि हम जब स्टॉक्स सुनते हैं तो लगता है बस एक लकड़ी का ढांचा होगा जिसमें पैर बांध दिए गए होंगे लॉक करके।
नहीं नहीं, इतना सिंपल नहीं था।
वही ना, इन स्ट्रक्चर्स की इंजीनियरिंग बहुत सेडिस्ट होती थी। इन्हें स्पेशली डिजाइन इसलिए किया जाता था ताकि कॉन्स्टेंट पेन इन्फ्लिक्ट किया जा सके। अगर एक क्रूअल जेलर चाहे तो वो कैदी के पैरों को उसके नेचुरल स्टांस से बहुत ज्यादा फैलाकर एक्सट्रीम स्ट्रेच कर सकता था।
हाँ, इससे उनके हिप्स और स्पाइन में एक्सट्रीम पेन होता था और वो सो नहीं सकते थे। तो हमें इस इमेज को विजुअलाइज करना होगा। आपकी नंगी पीठ पर लिक्टर्स की छड़ियों के खुले खून से लथपथ घाव है। आप बेहिसाब गंदगी में जमीन पर बैठे हैं, घुप अंधेरा है और आपके पैर एक ऐसी पेनफुल पोजीशन में लॉक्ड है जो आपको एक इंच हिलने नहीं दे रही।
यही वो पॉइंट है जहां आकर मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि ऐसी हॉरिफिक कंडीशन में, जहां एक आम इंसान दर्द से चिल्ला रहा होगा, दीवार पर सर पटक रहा होगा या बेहोश हो गया होगा, हिस्ट्री हमें बताती कि आधी रात को पॉल और साइलस गाने गा रहे थे।
वो लिटरली भजन गा रहे थे।
सही बात है।
मुझे ये जेन्युइनली समझ नहीं आता, कोई इतनी गंदगी, दर्द, खून और इतने भयंकर अपमान में आधी रात को गाना कैसे गा सकता है? ये तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट के कम्प्लीटली खिलाफ है। ये हिस्ट्री और ह्यूमन एंड्योरेंस दोनों का एक बहुत ही प्रोफाउंड इंटरसेक्शन है। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन दर्शन या एंशंट फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। अगर हम उस जमाने के प्रोमिनेंट दार्शनिक जैसे कि स्टोइक्स को देखें, तो उनका एक फंडामेंटल लाइफ प्रिंसिपल था कि भाई साहब, आपका बाहरी परिस्थितियों पर, फिजिकल पेन पर या सोसाइटी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। आप बस अपने रिएक्शन और अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। माइंड ओवर मैटर। पर यहां पॉइंट ये है कि पॉल और साइलस सिर्फ किसी स्टोइक फिलॉसफी का कोल्ड इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे।
तो उनका संगीत किस चीज पर आधारित था अगर वो फिलॉसफी नहीं थी?
उनका संगीत और उनका एंड्योरेंस एक्चुअली ज्यूइश थियोलॉजी यानी यहूदी धार्मिक सोच पर आधारित था। इस थियोलॉजी के अनुसार ईश्वर पूरी तरह से सर्वोच्च है, सॉवरेन है और हर हाल में दयालु है। हालात चाहे कितने ही टॉर्चर वाले क्यों ना हो, ईश्वर के अस्तित्व को एक्नॉलेज करना और उसकी स्तुति करना उनका एब्सोल्यूट फेथ था।
वाओ।
अगर हम पुराने टेक्स्ट देखें जैसे साम 119, तो उसमें क्लियरली आधी रात को अपने डीप दुख में भी ईश्वर की स्तुति करने का जिक्र मिलता है। तो उनके लिए गाना गाना एक डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो उनका डिक्लेरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस था उस घोर अंधेरे में।
और क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ ब्रूटल रोमन लॉ की फिजिकल आवाज थी और दूसरी तरफ उस अंधेरे में इन दोनों के गाने की आवाज। पर तभी आधी रात के इस संगीत के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरी रात की स्क्रिप्ट ही बदल दी।
एक जबरदस्त भूकंप आता है।
हाँ, प्राचीन काल में अर्थक्वेक को लोग जनरली दैवीय हस्तक्षेप यानी डायरेक्टली डिवाइन इंटरवेंशन मानते थे। पर इस स्पेसिफिक भूकंप की खासियत ये थी कि छत या दीवारें नहीं गिरती बल्कि दरवाजे झटके से खुल जाते हैं, बेड़ियां और लकड़ी के स्टॉक्स टूट जाते हैं, लेकिन तब भी कोई कैदी वहां से भागता नहीं है।
और उसके तुरंत बाद जो रिएक्शन आता है वो उस पूरे लीगल सिस्टम की ब्रुटैलिटी की एक क्लियर पिक्चर देता है। जब उस जेलर की आंख अचानक खुलती है और वो देखता है कि जेल के मैसिव दरवाजे खुले पड़े हैं,
तो उसका ऑटोमेटिकली फर्स्ट रिएक्शन ये नहीं होता कि वो चेक करे, वो सीधा अपनी तलवार निकालता है और वहीं आत्महत्या यानी सुसाइड करने वाला होता है।
बिल्कुल।
एक मिनट, उसने चेक तक नहीं किया, उसने बस दरवाजा खुला देखा और सीधा सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया। ये रिएक्शन थोड़ा अननेसेसरीली एक्सट्रीम नहीं लगता?
आज के हिसाब से एक्सट्रीम लगता है, पर उस वक्त के रोमन मिलिट्री कोड को समझना होगा। एक रोमन जेलर की लाइफ का एक ही इनफ्लेक्सिबल रूल था, अगर तुम्हारा स्टेट कैदी भागा तो उस कैदी की मुकम्मल सजा जेलर को पर्सनली भुगतनी पड़ेगी।
बाप रे, मतलब सजा ट्रांसफर हो जाएगी?
हाँ, और यहाँ बात सिर्फ जेल जाने की नहीं थी। रोमन जस्टिस सिस्टम ऐसी नकामी पर एक्सट्रीम फिजिकल टॉर्चर और डेथ पेनल्टी देता था, इसलिए अपने परिवार की बची खुची इज्जत को बचाने और उस ब्रूटली स्लो पब्लिक डेथ से बचने के लिए अपनी तलवार पर गिरकर सुसाइड करना रोमन समाज में एक ऑनरेबल और लॉजिकल एग्जिट माना जाता था। उसका दिमाग जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं है।
वाओ, तो उस जेलर पर उस स्ट्रिक्ट कानून का इतना गहरा टेलर था कि मौत उसे पनिशमेंट से बेटर ऑप्शन लगी। पर तभी अंधेरे से पॉल जोर से चिल्लाते हैं, रुक जाओ, अपना नुकसान मत करो, हम सब यही हैं, हम नहीं भागे। ये सुनकर उस जेलर का पूरा वर्ल्ड व्यू, उसका पूरा रियलिटी का परसेप्शन एक सेकंड में हिल जाता है। वो डर से कांपते हुए लाइट मंगवाता है और अंदर भागता है। उनके पैरों पे गिरकर एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल पूछता है, उधार के लिए मैं क्या करूं?
सही बात है।
और उसके तुरंत बाद की इवेंट्स दिमाग हिला देने वाली हैं। वो जेलर उन्हें, जो टेक्निकली अभी भी स्टेट एनिमीज थे, उसी रात अपने घर ले जाता है, उनके घाव धोता है, उन्हें अपने टेबल पर खाना खिलाता है और उनसे बापतिस्मा लेता है। यहां मैं थोड़ा पॉज लेना चाहूंगा। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक स्ट्रिक्ट रोमन जेलर ने, जिसने अभी सुसाइड सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि रूल टूट गया था, उसने अचानक इतना बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग खतरा क्यों मोल लिया?
ये स्टेप इतना बड़ा रिबेलियन था जिसका हम इजिली अंदाजा नहीं लगा सकते। एक ऑन ड्यूटी रोमन जेलर के लिए स्टेट के कैदियों को बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के लॉकअप से निकालना, उन्हें अपने पर्सनल घर में लाना, उनके घाव धोना और सबसे बड़ी बात, उनके साथ एक ही टेबल पर भोजन करना,
वो भी ज्यूइश यानी नॉन कोशर खाना।
एग्जैक्टली। ये स्ट्रिक्ट मिलिट्री रूल्स का वायलेशन था ही, पर साथ में इसे ट्रीजन यानी राजद्रोह के करीब माना जा सकता था।
मतलब अगर किसी पड़ोसी ने या सबोर्डिनेट ने देख लिया होता तो उसकी नौकरी तो छोड़िए, पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट किया जा सकता था।
बिल्कुल। डॉक्टर केना ने अपनी रिसर्च में एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इंसिडेंट का बहुत अच्छे से जिक्र किया है जो इस खतरे का स्केल बताता है। सम्राट टाइबेरियस और अग्रिपा की एक कथा आती है। एक बार एक रोमन सेंचुरियन, जो उस वक्त एक पॉलिटिकल कैदी यानी अग्रिपा की जेल गार्डिंग की ड्यूटी पर था, उसने सीक्रेटली एक रूमर सुनी कि सम्राट टाइबेरियस की डेथ हो चुकी है।
अच्छा।
और कैलिगुला जल्दी ही नया राजा बनेगा। अग्रिपा कैलिगुला का दोस्त था, तो उस सेंचुरियन ने फ्यूचर सेट करने के लिए खुशी में आकर कैदी अग्रिपा के साथ एक टेबल पर भोजन किया।
हाँ।
पर अचानक अगले दिन खबर आई कि टाइबेरियस मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है।
ओ भाई, तो उस सेंचुरियन की तो हालत खराब हो गई होगी सुनकर।
बिल्कुल, क्योंकि एक अक्यूज्ड कैदी के साथ खाना खाना अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालने जैसा था और उसे बहुत तगड़ी सजा मिली।
इस फिलिपी के जेलर को ये सारे रूल्स, ये सारे प्रेसिडेंट्स पता थे, फिर भी उसने रिस्क लिया।
सही में,
उसने इन जख्मी कैदियों को अपने रोमन घर के क्लासिकल एट्रियम में, जहां जनरली छत के बीच से बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक आंगन का कुआं या इम्प्लूवियम होता था, संभवतः वहां उन्हें नहलाया, उनके घाव साफ किए और वही उसी पानी से शायद खुद बैप्टिज्म भी लिया।
क्या बात है, ये दिखाता है कि उस आधी रात के आत्मिक अनुभव ने उस जेलर पर उस पुराने मिलिट्री कानून का सारा डर इफेक्टिवली खत्म कर दिया था।
तो देखिए, जेलर की और उसकी पूरी फैमिली की लाइफ रात भर में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई,
एकदम 0 से 100। लेकिन दूसरी तरफ, जिन मैजिस्ट्रेट्स ने पॉल और साइलस को कल स्क्वायर में पिटवाया था, वो सुबह बिल्कुल आराम से प्रॉपरली सो के उठते हैं।
हाँ, उन्हें तो यही लग रहा था कि कल आई एक भीड़ को उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल कर लिया और रायट शांत हो गया। वो सुबह अपने लिक्टर्स को एक छुपचाप सा मैसेज देकर जेलर के पास भेजते हैं कि इन दोनों को अब चुपके से शहर से जाने दो, केस क्लोज।
उनका अप्रोच बहुत क्लियर था कि पब्लिक शो ऑफ हो चुका है, अब इन ट्रबल मेकर्स को बिना शोर शराबे के निकालो ताकि आगे का बिजनेस नॉर्मल चले।
बिल्कुल, वही उनका प्लान था। लेकिन पॉल यहाँ आकर उनका सारा क्वाइट एग्जिट वाला प्लान फेल कर देते हैं। वो जेल से ऐसे स्नीक आउट करने से ब्लेटेंटली मना कर देते हैं और एक ऐसी बॉम्बशेल इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करते हैं जो मैजिस्ट्रेट्स के होश उड़ा देती है। वो लिक्टर्स को बताते हैं कि हमें बिना ट्रायल दिए पब्लिक में पीटा गया है और हम रोमन नागरिक हैं। आप कहो उन मैजिस्ट्रेट से कि वो खुद आकर हमें बाहर निकालें।
ये खबर सुनते ही मैजिस्ट्रेट्स के पैरों तरह से एक्चुअली जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि उस दौर में जूलियन लॉ लागू था, किसी भी रोमन सिटीजन को बिना प्रॉपर ट्रायल के पीटना, खास तौर पर उन लिक्टर्स की हैवी छंडियों से, एक कैपिटल ऑफेंस जैसा था।
मतलब डायरेक्ट कानून का उल्लंघन।
हाँ, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल ऐसा करता पकड़ा जाता तो उसे उसकी पोस्ट से तुरंत हटाया जा सकता था। यहाँ तक कि जिस शहर की अथॉरिटी ने ये पास किया उनका रोमन कॉलोनी का हाईली प्राइज स्टेटस भी परमानेंटली छिन सकता था। और ये सिटीजनशिप वाली बात रैंडमली हवा में नहीं कही गई थी। पॉल का नाम पॉलुस अपने आप में एक प्रॉपर रोमन कॉग्नोमिन था, जो कि रोमन आइडेंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल प्रूफ था।
पर यहाँ मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है, एक मिनट, उसने पिटने तक का इंतजार क्यों किया? अगर मेरे पास ऐसी एक अनक्वेश्चनेबल गेट आउट ऑफ जेल फ्री पावर होती, मैं तो पहली लाठी हवा में उठने से पहले ही चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देता कि हे, आई एम अ रोमन सिटीजन, मुझे हाथ मत लगाना। किसी ने इतनी ब्रूटल मार क्यों खाई जब वो लिटरली एक सेंटेंस बोलकर बच सकते थे?
और यही लॉजिक इस पर्टिकुलर इवेंट को इतना ब्रिलियंट बनाता है। ये कोई ओवरसाइट, गलती या बेवकूफी बिल्कुल नहीं थी। ये पॉल का एक फियर्सली कैलकुलेटेड मास्टर स्ट्रोक था। श्रोत इस रणनीति को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं।
कैसे?
अगर पॉल मार पड़ने से पहले वहां अगोरा में अपनी सिटीजनशिप क्लेम करते तो लॉ के मुताबिक मैजिस्ट्रेट्स उनसे उस आइडेंटिटी को प्रूव करने का इमीडिएट डॉक्यूमेंटेशन मांगते।
मतलब एंशियंट वर्ल्ड का पेपरवर्क और एंडलेस डिलेस।
एग्जैक्टली, ट्रायल लंबा खिंच जाता, मैजिस्ट्रेट्स उनके होम सिटी तार्सिस से फिजिकल दस्तावेज मंगवाते मैसेंजर्स के जरिए, जिसमें महीनों लग जाते। और इस पूरे डिले के दौरान वो मालिक और विरोधी भीड़ लोकल पब्लिक में उनके खिलाफ एंटी रोमन कस्टम्स लाने का नेगेटिव प्रोपेगेंडा आराम से फैलाते रहते।
ओह वाओ, अब समझ आया।
लेकिन पहले साइलेंट रहकर और चुपचाप पिटने के बाद पावर डायनामिक्स कम्प्लीटली रिवर्स हो गए। अब कानून तोड़ने की सारी मैसिव लीगल गलती उन पावर ड्रंक मैजिस्ट्रेट्स की थी। जब ऑफिशियल्स को एहसास हुआ कि उन्होंने एक लीगल रोमन सिटीजन पर बिना ट्रायल के लिक्टर की छड़ी चलवा दी है, तो वो डर गए। उन्हें पर्सनली आकर एक पब्लिक जेस्चर में पॉल से हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ा कि प्लीज आप पीसफुली शहर छोड़ दें।
वाओ, तो इसका फाइनल इफेक्ट ये हुआ कि उनका मेन मकसद अपनी स्किन बचाना नहीं था, बल्कि फिलिपी में जो नया नया बहुत ही वल्नरेबल कम्युनिटी फॉर्म हुआ था, जिसमें वो जेलर, उसकी फैमिली और बाकी लोकल बिलीवर्स थे, उनको एक परमानेंट प्रोटेक्शन शील्ड देना था।
सही पकड़ा आपने।
अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस नए ग्रुप को लीगली या फिजिकली टंग करने से पहले 100 बार डरेगा, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता है कि इनके फाउंडेशन में एक स्ट्रॉन्ग रोमन सिटीजन है, जिसके साथ उन्होंने पहले ही एक बहुत बड़ा लीगल ब्लंडर कर दिया है। क्या जबरदस्त लीगल और साइकोलॉजिकल चेस गेम खेली यहां पर।
ये उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। लेकिन इस बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत के बावजूद उनका सफर वहीं नहीं रुक सकता था। उनकी हालत टेक्निकली बहुत खराब थी। जख्मी हालत में अपने उन्हीं छिल छुके और खून से भरे बदन के साथ उन्हें अब आगे की प्लानिंग करनी थी।
उसके बाद वो विया इग्नेटिया का इस्तेमाल करते हैं, जो उस जमाने की बेहद इंपॉर्टेंट और मैसिव रोमन सड़क थी। एम्पिपोलिस और एपोलोनिया नामक शहरों से गुजरकर वे आगे चलकर थेसालोनिका पहुंचते हैं। अब इस फिजिकल जर्नी को इमेजिन कीजिए। ये विया इग्नेटिया रोड स्टोन पेव्ड थी और लगभग 20 फुट चौड़ी थी, और थेसालोनिका तक की दूरी लगभग 100 माइल्स यानी 107 किलोमीटर का सफर थी। ऐसे फिजिकल ट्रॉमा के बाद, जहां हर कदम पर पीठ स्ट्रेच होती होगी, इतना लंबा सफर पैदल या खच्चर पर तय करना ही अपने आप में एक मिराकुलस एंड्योरेंस लगता है।
और उस दर्द के बाद थेसालोनिका पहुंचकर उन्हें रिलीफ नहीं मिलने वाला था। यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप थोड़ा अलग और ज्यादा चैलेंजिंग था। थेसालोनिका एक बड़ी पॉपुलेशन वाला हब था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक फ्री सिटी थी।
फ्री सिटी से क्या मतलब है यहाँ?
फ्री सिटी का मतलब है कि रोमन एम्पायर के अंडर आते हुए भी इनको अपने इंटरनल लॉज और गवर्नेंस चलाने की लिबर्टी मिली हुई थी। यहाँ के हाईएस्ट लोकल अधिकारियों को पॉलिटार्क्स कहा जाता था। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं?
हाँ बताइए।
एक बहुत लंबे अरसे तक हिस्टोरिकल क्रिटिक्स समझते थे कि एक्ट्स के लिखने वाले ने ये टर्म पॉलिटार्क्स इन्वेंट किया है, पर बाद में आर्कियोलॉजी ने यहाँ के इंस्क्रिप्शंस में इस वर्ड को डिस्कवर किया, जो कि टेक्स्ट के हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का एक और बहुत सॉलिड प्रूफ बन गया।
तो ऐसी मॉडर्न फ्री सिटी में भी उनको सेम लेवल का विरोध फेस करना पड़ा?
हाँ, बल्कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ने एक और ही नया और खतरनाक रूप ले लिया। जब पॉल वहाँ के लोकल सिनेगॉग में डिस्कशंस और डिबेट स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सी अपर क्लास मैसेडोनियन महिलाएं और प्रोमिनेंट लोग उनके मैसेज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पर जो लोग उनसे फियर्सली डिसएग्री करते थे, उन्होंने लॉजिक से फाइट नहीं की।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने क्या किया? बाजार में घूमने वाले बेरोजगार और फ्रस्ट्रेटेड आइडलर्स को इकट्ठा किया। एंशियंट सिटीज में ऐसे लोगों को आसानी से पैसे या दारू देकर एक वायलेंट मॉब में कन्वर्ट किया जा सकता था। उन्होंने इस मॉब को एक्टिवेट करके पूरे शहर में बवाल खड़ा कर दिया।
यहाँ एक बड़ा क्लियर ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। ये देखने बड़ा सैड है और फैसिनेटिंग भी, कि कैसे हर एरा में छोटी विरोधी ताकतें सोसाइटी के एग्जिस्ट करने वाले असंतोष, यानी बाजार के बेरोजगार और डायरेक्शनलेस लोगों का ओपनली और शेमलेसली इस्तेमाल अपने पर्सनल स्पेसिफिक फायदे और पॉलिटिक्स के लिए करती हैं।
बिल्कुल। और अगर हम थेसालोनिका के इस इंसिडेंट को थोड़े बड़े और ब्रॉड पैमाने पर देखें, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें दिखेगा कि फिलिपी से थेसालोनिका आते आते एक्चुअल लीगल आरोप का नेचर ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। फिलिपी में बेसिक चार्ज क्या था? ये लोग एंटी रोमन कस्टम्स ला रहे हैं।
राइट।
पर यहाँ थेसालोनिका में उन इंस्टिगेटर्स को पता चल गया था कि रोमन अथॉरिटीज शायद लोकल रिलीजन या कस्टम डिस्प्यूट्स में इतना इंटरफेयर ना करें, तो उन्होंने मामले को एलिवेट कर दिया सीधे राजद्रोह यानी ट्रीजन पर।
सबसे डेडली चार्ज।
सही कहा। उन बेरोजगारों की हैवी मॉब ने पॉलिटार्क्स के आगे चिल्लाकर आरोप लगाया, ये लोग सीजर के आदेशों और डिक्रीज का डायरेक्ट उल्लंघन करते हैं, और कहते हैं कि एक और इंडिपेंडेंट राजा है जिसका नाम जीसस है।
अब यहाँ रोमन लॉ का दर देखिए। उस दौर में किसी भी नए राजा की बात करना या किसी दूसरे को किंग डिक्लेयर करना टेक्निकली ट्रीजन क्यों माना जाता था? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शंस के उस क्रेज वाले जमाने में किसी दूसरे आदमी के राजा बनने की भविष्यवाणी करने का एक्सप्लिसिटली मतलब था कि आप करंट सम्राट करंट सीजर की जल्दी मौत की कामना या भविष्यवाणी कर रहे हैं।
हाँ, और एम्परर्स इस चीज को लेकर इतने ज्यादा पैरानोइड थे कि इस स्पेसिफिक चार्ज का एक ही रिजल्ट होता था, डायरेक्ट मौत की सजा।
एग्जैक्टली।
इसलिए विरोधी भीड़ की ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी और मुद्दे को फ्रेम करने की स्ट्रेटजी को समझना बहुत डीप है। उन्हें किसी टेक्निकल थियोलॉजिकल ट्रूथ से रत्ती भर मतलब नहीं था। उन्हें बस प्रॉब्लम को आग लगाकर इतना इफेक्टिवली बड़ा बना देना था, उसमें ट्रीजन और सीजर का नाम डाल देना था, ताकि लोकल अधिकारी चाहकर भी उसे अनदेखा ना कर सकें।
क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बगावत का एक ग्राम डर भी रोम तक पहुंचा, तो थेसालोनिका का ये प्रिविलेज्ड फ्री सिटी का स्टेटस एक दिन में छीन लिया जाएगा।
बिल्कुल।
और इसी इंटेंस पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जब वो मॉब एक्चुअल में पॉल और साइलस को उनके टेम्पररी ठिकाने पर नहीं ढूंढ पाती तो वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वहां के एक लोकल जेसन पर निकालते हैं। जेसन जिसके घर पॉल ओरिजिनली रुके हुए थे उसे फोर्सफुली अरेस्ट कर लिया जाता है।
बेचारा जेसन।
अथॉरिटीज उस पर फाइन लगाते हैं और उसे एक लीगल मुआवजा या बॉन्ड फॉर्म में गारंटी साइन करवाते हैं कि वो इन ट्रबल मेकर्स को अब यहां शेल्टर नहीं देगा और शांति बनाए रखेगा। और एग्जैक्टली इसी बॉन्ड के लीगैलिटी और प्रेशर में आकर पॉल और साइलस को सेफली वहां से निकलना पड़ता है। उन्हें प्रैक्टिकली रात के अंधेरे में वहां से फरार होना पड़ता है।
और ये कंक्लूजन इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स का बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। ये नैरेटिव दिखाता है कि लोकल कानून और सिस्टम, चाहे वो फिलिपी के मैजिस्ट्रेट्स हों या थेसलेनिका के पॉलिटार्क्स, भले ही थियरी में एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस और पैक्स रोमाना की शांति की लंबी चौड़ी बात करें, पर ग्राउंड रियलिटी में आखिरकार वो एग्जैक्टली वही स्टेप लेते थे जिससे भीड़ शांति से अपने घर चली जाए। लॉ का रियल एप्लीकेशन इंसाफ नहीं था, बल्कि रोम की नजर में अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्लीन दिखाना था।
इस बहुत ही इंटेंस डीप डाइव को समेटते हुए ये एनालिसिस क्लियरली दिखाती है कि हिस्ट्री में विचारों और नई मान्यताओं का कलिजन कभी भी ग्रेसफुली नहीं होता। ये टकराव हमेशा डायरेक्ट सत्ता, इकोनॉमिक पावर, परिवार की इज्जत और स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम से टकराता है।
सही बात है।
जब फिलिपी में उन मालिकों को अपना डायरेक्ट फाइनेंशियल नुकसान दिखा तो उन्होंने बड़ी चालाकी से पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म और ज़ीनोफोबिया का चोला पहनाकर पूरे लीगल सिस्टम को वेपनाइज कर लिया। जब थेसलोनाइका में उन पुराने रिलीजियस लीडर्स को अपने इन्फ्लुएंस के शिफ्ट होने का डर लगा तो उन्होंने मॉब क्रिएट की और डायरेक्ट राजद्रोह का फेटल लेबल चिपका दिया।
दोनों ही सिचुएशंस में हमने क्लियरली देखा कि पावरफुल फोर्सेस कानून का इस्तेमाल फैक्ट फाइंडिंग और ट्रुथ एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं कर रही थीं। वो कानून को एक हथियार की तरह अपनी होल्ड मेंटेन करने के लिए यूज कर रही थीं। पर ऐसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी पॉल जैसे लोगों ने कैसे कानून की खामियों का राइट यूज करके अपने नए लोगों की जान बचाई, ये भी ह्यूमन कन्विक्शन और प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है।
एकदम राइट ऑब्जर्वेशन है। अगर लोग अपने कन्विक्शंस पर टिके रह सकते हैं तो फिजिकल और पॉलिटिकल अंधेरा भी उन्हें पूरी तरह दबा नहीं पाता।
बिल्कुल। और इन सब हिस्टोरिकल डीप रियलिटीज को देखने के बाद एक ऐसी चिंतनशील और डीप डिस्टर्बिंग बात है जो एक्चुअली मेरे दिमाग से इजिली नहीं निकल रही। हम अक्सर सोचते कि एंशियंट सिविलाइजेशन में लॉ एक सॉलिड चीज होगी।
हाँ,
अगर इन रिकॉर्ड्स में हम एक्सप्लिसिटली देख रहे हैं कि चाहे रोमन कॉलोनी के मैजिस्ट्रेट्स हों या थेसलोनिका के इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड पॉलिटार्क्स, उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल फैसला बेसिकली मॉब अपीज करने और अपना प्राइवेट पॉलिटिकल फायदा देखने पर बेस था, तो जस्टिस की जगह कहां बची? एक बेसिक सवाल जो माइंड में कॉन्स्टेंटली प्ले हो रहा है वो ये
कि क्या एंशियंट वर्ल्ड में उस हाई पेडेस्टल पर बैठा है इंसाफ एक्चुअली में कभी कानून और सच्चाई पर आधारित था भी?
वही ना, ये कानून शुरू से ही सिर्फ सार्वजनिक तमाशे, पब्लिक स्पेक्टिकल्स को कंट्रोल करने और लोगों के प्रिमिटिव गुस्से को मैनेज करने का एक मैकेनिकल, हार्टलेस टूल था। और शायद उससे भी गहरा और समवॉट अनकंफर्टेबल सवाल ये उठता है, अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के इस एंशियंट मैकेनिज्म को आज के ग्लोबल सिस्टम से रिफ्लेक्ट करें तो क्या ठीक वही चीजें आज भी एग्जिस्ट नहीं करती? हमने मशीनरी मॉडर्न कर ली है, पर क्या हमने फंडामेंटली आगे प्रोग्रेस किया है? यह एक ऐसी अनकंफर्टेबल रियलिटी है जो आज भी चिंतन करने पर मजबूर कर देती है। और इसी थॉट के साथ मैं यहां इस डीप डाइव को समाप्त करता हूं।